ஓம் சாந்தி. சம்மான் தேவா பாக்ய விதாத்தா, ஹம் சப்கா பியாரா பாபா பச்சோ கோ கித்தனா சம்மான் தேத்தே ஹே, ரோஜ் கி முரளி மே இத்தனே சமான் ஓர் சம்மான் ஹம் சப்கோ ப்ராப்த் ஹோதே ஹே. லேக்கின் சம்மான் தேத்தே ஹுயே பி பாக்ய விதாத்தா அப்னே பச்சோ கோ பாக்ய பாண்டதே பி குச்ச மரியாதாவோ மே பந்தா ஹுவா ஜரூர் ஹே. ஜோ காயதே ஹே, கானூன் ஹே, விதி விதான் ஹே, உன்கோ சம்மான் தேத்தே ஹுயே ஹம் சப்கோ சம்மான் பி தேத்தே ஓர் ஹமாரா பாக்ய பி ஊஞ்சே சே ஊஞ்சா பனா தேத்தே ஹே. ஆப் சபி ஜோ பாபா கே வரதான் சுன்தே ஹே, ஜப் மேனே யே வரதான் முரளி மே சுரூ கியே தாதி ஜி கி பிரேரணா சே, தோ ஏக் ஹி லக்ஷ்ய ரக்கா கி பகவான் ஐசே ஹி குச்ச பி நஹி தேதா, உஸ்கே லியே உஸ்கி மரியாதா ஹே, கோய் நா கோய் விதி ஹே, விதான் ஹே. உன் விதி ஓர் விதான் பர் ஜோ ஜித்தனா சல்தே ஹே, காயதே கானூன் கா ஜித்தனா பாலன் கர்தே ஹே, உத்தனா உன்கே பாக்ய மே படோத்ரி ஹோத்தி, பாக்ய பி படத்தா ஜாத்தா ஹே, ஓர் உன்கோ சப்கா சம்மான் பி ப்ராப்த் ஹோதா ஹே. ஜேசே ஆஜ் கே வரதான் மே ஆப் சபி நே சுனா கி சப் கஜானே பச்சோ கே ஹே, பாபா கஜானோ கா பண்டார் ஹே, ஓர் பச்சோ கே லியே சப்கோ சமான் ரூப் சே சப் கஜானே தியே ஹே. லேக்கின் வோ கஜானே ஸ்வ கல்யாண் ஓர் விஸ்வ கல்யாண் கே ப்ரதி ஹே. ஜோ பச்சே ஸ்ரீமத் பிரமாண் இன் கஜானோ கோ ஸ்வ கல்யாண் ஓர் விஸ்வ கல்யாண் மே லகாத்தே ஹே, உன்கா பாக்ய அப்னே ஆப் ஊஞ்சே சே ஊஞ்சா பன்தா ஜாதா ஹே. ஓர் ஜோ ஸ்ரீமத் மே மன்மத் ஓர் ஜன்மத் மிக்ஸ் கர் தேதே ஹே, வோ க்யா கர்தே ஹே, வோ அமானத் மே கியானத் கர்தே ஹே, வோ அப்னே பாக்ய கோ லகீர் லகா தேதே ஹே. தோ பாபா கே வரதான் ஹம் சப் சுன்தே ஹே, மே சமஜ்தா ஹூ பாபா கின் மரியாதாவோ மே பந்தா ஹுவா ஹே, கின் பாத்தோ கோ பாபா சம்மான் தே ரஹா ஹே, ஓர் ஹம் பச்சோ கோ பி யஹி சிகாத்தா ஹே கி ஆப் பி பஹலே விதி ஓர் விதான் கோ சம்மான் தோ, ஜோ ஈஸ்வரிய நியம் காயதே பனே ஹுயே ஹே உன்கோ சம்மான் தோ, அப்னே ஆப் ஆப்கோ சம்மான் மிலேகா. தோ ஆஜ் மே குச்ச ஆப்கே ஆகே விதி ஓர் விதான் கி ஏக் சுந்தர் லிஸ்ட் பதாத்தோ. ஹம் சப் ஜானதே ஹே பஹத் சாரி பாத்தே பாபா ஹம் பச்சோ கோ பாவ கே ரூப் மே வரதான் கே ரூப் மே கஹ ரஹே ஹே, ஓர் உஸ்கே லியே ஜோ விதி விதான் பதாயே ஹே, ஜின் மரியாதாவோ மே பந்த் கர்கே ஹம் சப் கோ ஆகே படாயா ஹே. சப்ஸே ஏக் சோட்டி சி பாத் யாத் ரக்னா, பாபா கஹதே ஹே தேனா ஹி லேனா ஹே, தேனா ஹி லேனா ஹே. ஏக் பஹத் சுந்தர் இஸ் ஈஸ்வரிய விஸ்வவித்யாலய கா விதான் ஹே, யே விதி ஹே, ஹம் கிசி சே லேகர் கே ஃபிர் நஹி தே ரஹே ஹே. ஹம் சப்கோ பாபா நே சிகாயா ஹே, அகர் தும்ஹே சம்மான் சாஹியே தோ தூஸரோ கோ சம்மான் தோ, மாங்கோ நஹி, யே சீஜ் மாங்கனே சே நஹி மில்தி ஹே, அகர் ஆப் தூஸரோ கோ சம்மான் தேங்கே, ஆப் குணவான் பன் கர்கே ரஹேங்கே, தோ ஆப்கோ சப் கா சம்மான் அப்னே ஆப் மில்தா ஹி ரஹேகா. அகர் கோய் கஹே மே சதா குஷி மே சதா பிரசன்ன சித்த ரஹூ, தோ பாபா நே உஸ்கி விதி பதாயி, குஷி கா தான் கரோ, குஷி கா கஜானா பாட்டோ, ஜித்தனா தூஸரோ கோ குஷ் கரேங்கே குஷி கா தான் தேங்கே உத்தனா ஆப்கா குஷி கா கஜானா பர்பூர் ஹோதா ஜாயேகா. ஜேசே ஆஜ் கே ஸ்லோகன் மே தா, अगर सदा हर्षित रहना है तो सब आकर्षणों से मुक्त रहो। अगर हम किसी भी आकर्षण में आकर्षित हो रहे हैं तो हम सदा हर्षित नहीं रह सकते। ये विधि है, ये विधान है, और जब हम इन्हीं विधि और विधान को यथार्थ रीति से सम्मान देते हैं, इन पर हम चलते हैं, तो हमारा भाग्य भी ऊंचे से ऊंचा बन जाता है और हमें सबका सम्मान भी अपने आप प्राप्त होता है। तो जब लिस्ट मेरे सामने आई तो बाबा की बातें इतनी अंदर अंदर चलने लगी। देखो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे से मदद मांगो नहीं, क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं, मेरा हक है सब बच्चों को एक जैसी मदद देना, मैं आया ही हूं मदद देने के लिए। लेकिन मदद का अनुभव वही करते हैं जो हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हिम्मतवान बच्चों को भगवान की मदद अपने आप मिलती है। अगर हम सब हिम्मतहीन बन जाएं तो हम भाग्य से वंचित हो जाएंगे, मदद से ही वंचित हो जाएंगे। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में हिम्मत, उमंग, उत्साह एक श्वास है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में, कभी भी किसी भी परिस्थिति में डगमग होने की बजाय हिम्मत का कदम आगे बढ़ा दो, भगवान मदद के लिए बंध जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे अगर निश्चिंत जीवन का अनुभव करना है तो निश्चय बुद्धि, सदा इसी निश्चय में रहो कि कल्प कल्प की विजय मुझ आत्मा को मिली है, मैं विजयी आत्मा हूं। निश्चय बुद्धि आत्माएं विजयी रहती हैं और सदा निश्चिंत स्थिति में रहती हैं। अगर हल्केपन का अनुभव करना है, इस ब्राह्मण जीवन में डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना है, अपने आप को निमित्त समझ करके चलो। जो निमित्त हैं वो निर्माण रहते हैं, निमित्त हैं वो करण करावनहार बाबा को सामने रखते हैं, कराने वाला करा रहा है, मेरा बहुत बड़ा ये भाग्य है। कहीं भी मेरा पन्ना आए, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, आपके सब बोझ हल्के हो जाएंगे, डबल लाइट स्थिति बन जाएगी। अगर कोई आत्मा अपनी शांत स्वरूप स्थिति में रहना चाहती है, शांति का गहन अनुभव करना चाहती है, तो उसके लिए विधि विधान क्या है? शांति की गहन अनुभूति के लिए बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर विधि बताई है, अपने स्वभाव को सरल बना दो। अगर सनकी स्वभाव है, थोड़ा सा शब्द मैं यूज कर रहा हूं, सनकी स्वभाव, कईयों के अंदर सनक पैदा होती, माना वहम पैदा होता है। छोटी छोटी बात में अगर कोई वहम करता है, शक करता है, शंका करता है, तो कहते हैं जहां शक और शंका है वहां शांति नहीं रहती। अगर सब समस्याओं से हम मुक्त रहना चाहते हैं तो उसकी बड़ी सरल विधि बाबा ने बताई है, इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। बहुत छोटे छोटे स्लोगन हम लोगों ने लिख के रखे हैं और समय पर समय पढ़ते रहते हैं, लेकिन समस्याओं में अगर कोई उलझ रहे हैं, माना उनकी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, दो बातें पतन का मूल कारण बनती हैं। व्यक्ति की अत्यधिक आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इसको बाबा एक अपने शब्दों में कहते हैं, साकार बाबा के शब्द सुनाता हूं, हबच हबच, समझ रहे हैं, लालच हबच। और जब इस हबच की व्याख्या बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में की तो ये कहा कि कामनाएं काम विकार का अंश है। आकांक्षाएं अगर बढ़ती जाती व्यक्ति की, मान लो आपको एक स्थान एक चारपाई मिली है यज्ञ के अंदर नियम अनुसार, और आपने 10 स्थानों पर अपने स्थान बनाए हुए हैं, आकांक्षाएं कम नहीं होती, सब चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, तो क्या होगा? वो आपका पतन का कारण बन जाएंगी। इसलिए आकांक्षाएं व्यक्ति का पतन करती हैं। और दूसरा, अहंकार महाशत्रु है। सभी इस पर ध्यान देंगे। अगर नम्र चित्त हैं तो सबकी दुआएं मिलती हैं, निर्माण चित्त हैं तो हम सबकी दुआओं का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, सबका सम्मान मिलने लगता है। और जरा भी अहंकार आता है, मैं आता है, तो बोझ बन जाता है, सबकी दुआओं से वंचित कर देता है। इसलिए कुछ ऐसे विधान जब चिंतन में लाते हैं कि अगर कोई के आगे बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, तो क्या हम उन विघ्नों के समाप्त करने की विधि को जानते हैं? बाबा ने विधि बताई, ऐसे तो नहीं कह दिया छह मंत्र मैं कर देता हूं सब विघ्न आपके खत्म हो जाएंगे। अगर किसी स्थान पर बहुत विघ्न आ रहे हैं, किसी के पुरुषार्थ में बहुत विघ्न आ रहे हैं, तो बाबा ने उसकी विधि बताई है, अपने लगन की अग्नि को प्रज्वलित करो, लगन को बढ़ा दो। अगर लगन लग गई, एक बाबा में मगन हो गए, तो ये विघ्न अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। अगर विघ्न आ रहे हैं तो उसके एक मूल कारण पर ध्यान दो। जरूर कहीं न कहीं व्यर्थ और व्यक्त वातावरण बनाया हुआ है। जो आत्माएं विघ्न मुक्त बनना चाहती, अपने स्थान के वातावरण को विघ्न मुक्त रखना चाहती हैं, उन्हें उस स्थान से व्यक्त और व्यर्थ वार्तालाप को बंद करना होगा। अगर उनको हमने स्टॉप नहीं लगाया, उनको हमने नहीं रोक पाया, तो एक विघ्न जाएगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा। विघ्नों को ही भगाते भगाते हमारी जीवन परेशान हो जाएगी, मेहनत का अनुभव होने लगेगा। इसलिए हम सबको बाबा ने, बाबा तो सबका बच्चा, सब बाबा के बच्चे हैं, और सबको समान अधिकार देता है। समान अधिकार मिलते हुए भी आप देखेंगे, कोई माला माल है, कोई संपन्न है, कोई भरपूर है, और कोई खाली खाली अनुभव करते हैं। भाग्य विधाता ने भाग्य की रेखा हर बच्चे की लंबे से लंबे खींची, और भाग्य विधाता जिसका बाबा हो, मान लो किसी का पिता बहुत धनवान, भाग्य बांटने वाला है, सबको कुछ देने वाला है, और उसका बच्चा अगर कोई गरीब है, किसी के आगे हाथ फैलाता है, मांगता है, तो लोगों का एक संकल्प जरूर चलेगा, भले कोई बहुत रहम दिल होंगे, मदद करेंगे, लेकिन ये संकल्प चलेगा शायद इसका अपने बाप से, अपने पिता से कनेक्शन ठीक नहीं है। नहीं तो इसका पिता तो दाता है, देने वाला है, बांट रहा है, फिर भी ये दूसरों के आगे हाथ फैलाता है, क्या कारण है? हम सबका बाबा भाग्य विधाता, वरदाता, हम सबके भाग्य की कितनी लंबी रेखा बनाने के लिए आया है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म की नहीं, लेकिन पूरे 84 जन्मों की भाग्य की रेखा बच्चे खींच लो, मैं तुमको कलम भी देता हूं और चाबी भी देता हूं। हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य बनाने की कलम बाबा ने अपने दे दी है, बच्चे ले लो और इस कलम से जितनी लंबी रेखा खींचना चाहो अपनी खींच लो। खींच रहे हैं ब्राह्मण बच्चे, और वो कलम श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों की कलम, श्रेष्ठ कर्मों की कलम। और श्रेष्ठ कर्म की व्याख्या जो बाबा ने बताई है बहुत गहरी व्याख्या है। व्यक्ति समझता है हमने समाज की सेवा कर ली, हमने ये पुण्य कर्म कर दिया, इसको दान कर दिया, इसको भोजन खिला दिया, इसको कपड़े दे दिए, इसको मदद कर दी, पुण्य कर लिया। बाबा इसको पुण्य कहता ही नहीं है। बाबा कहता है कि मेरे बच्चों के पास जो कलम है वो श्रेष्ठ कर्म की कलम है, और श्रेष्ठ कर्म उसको कहा जाता है जो किया जाए, और कहते नेकी कर दरिया में डाल। कभी भी उस श्रेष्ठ कर्म का अगर कोई वर्णन कर रहा है कि मैंने ये किया, मैं इतना करता हूं, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं रहता, वो जैसे कच्चा फल खा लेता है, किया और खत्म। अगर कोई को अपने श्रेष्ठ भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बनाना है तो जैसे हमारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने किया, आप समझ सकते हो इतना ऊंचा पद, उससे लक्ष्मी को भी धन कहां से मिलता है। कई बार बाबा बड़ी रमणीकता से कहते हैं वो धन कहां से लाएंगी, वो भी तो श्री नारायण के अंडर है ना, श्री नारायण से ही लेंगी ना। लेकिन धन देवी से लक्ष्मी बनी, देने वाला श्री नारायण गुप्त है। संगम युग पर जो नर श्री नारायण बने, ब्रह्मा बाबा ने जो इतना ऊंचा श्रेष्ठ पद प्राप्त किया, जो श्री लक्ष्मी को भी देने वाला बना, उसके लिए उसने कितना गुप्त दान किया, गुप्त। ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चे इस हाथ से करो ना, तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। आज कोई व्यक्ति कुछ करता है तो एक करता है, 10 जगह वर्णन कर देता है, मैं ये करता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, और शायद ऐसे लगता है कि ये नहीं करेगा तो यज्ञ ही नहीं चलेगा। बहुत बड़ी फिलॉसफी बाबा ने सिखाई है कि अगर कोई ने करके और फिर वर्णन करके इधर उधर बता दिया तो वो वहीं पर उसका समाप्त हो गया, खत्म हो गया, उसका फल उसको महिमा के रूप में प्राप्त हो गया। और अगर उसने गुप्त रीति से किया, एक बार बाबा ने मम्मा के लिए बात कही थी, क्योंकि धनलक्ष्मी तो वही बनने वाली है, कि देखो ये धन लेकर के तो नहीं आई, कुमारी थी, मम्मा के पास कोई धन नहीं था, समर्पित हुई। और ज्ञान धन में इतना दान किया, ज्ञान धन का, धन दान करते, ज्ञान धन लुटाते हुए भी कभी ये नहीं कहा मैं दे रही हूं, मैं तो प्रभु प्रसाद बांट रही हूं, प्रभु प्रसाद दे, उसने दिया है उसका प्रसाद मैं सबको बांट रही हूं। बाबा ने कहा बच्ची ने धन का यज्ञ में धन नहीं लगाया, लेकिन बहुत गुप्त रीति से अपना भाग्य बनाया, कभी भी उसका वर्णन नहीं किया कि मैं कर रही हूं, मैंने किया, मैंने इनको ज्ञान दिया, मैंने इनको सही मार्ग दिखाया। वो गंभीरता की देवी थी, संगम पर वो गंभीरता की देवी बनी, कभी वर्णन नहीं किया, मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। दादी को तो देखा है सबने, दादी जी ने इतनी सेवाएं की, विशाल देखो आज कहां से कहां यज्ञ को पहुंचाया, सबके सहयोग से किया, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कर रही हूं, मैं मुखिया हूं, मैं हेड हूं। उन्होंने मैं को मारा, अहंकार को मार दिया, बहुत नम्र चित, निर्माण चित, सरल चित, उसके आधार से ये सब हमारी देवियां, दादियां देवियां बन गई, दाता बन गई। हम सभी भी अगर इस विधि को यथार्थ रीति से समझते हैं, यथार्थ रीति से विधि और विधान पर चलते हैं, तो बाबा ने एक तरफ हमें कलम दी भाग्य बनाने की, कर्म करो, करने के बाद कर्तापन से मुक्त रहो, और दूसरी बात चाबी दी मेरा बाबा, बहुत सुंदर चाबी है, लेकिन इस चाबी को लगाने का तरीका यथार्थ होना चाहिए। चाबी को लगाने का तरीका क्या है, कहते हैं अगर ताला कहीं है तो उसको सीधी चाबी लगाएंगे तो खुलेगा, अगर उल्टी लगा दिया तो चाबी टूट जाएगी। कई बार कोई कोई बच्चे बाबा बाबा तो कहते हैं लेकिन उल्टी चाबी लगाते रहते हैं। सीधी चाबी क्या है, 4-5 बातें आपको सुनाता हूं, सीधी चाबी जो बताई, जिससे बहुत सारी प्राप्तियां हम सबको होती हैं। बाबा ने कहा है बच्चे स्वचिंतन करो पर चिंतन नहीं, इसका स्लोगन क्या है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। कोई ब्राह्मण आत्मा अपना उन्नति की ओर जाना चाहती है तो उसकी चाबी यही है, अपनी घोर तो नशा चढ़े, स्वचिंतन करो। कोई कुछ भी कर रहा है उसका भाग्य उसके हाथ में है, विधि है, क्या विधान है इसका, जो करेगा वो पाएगा, जो बोएगा वो काटेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसा सोचेगा वैसा बनेगा, ये सब विधान है। ये ईश्वरीय विधान, अनादि विधान, जिसमें भगवान भी बंधा हुआ, कुछ नहीं कर सकता। और हम सबको भी कहता है इस विधि और विधान के अंदर बंध करके रहो, अगर इसको यथार्थ रीति से आप पालन करेंगे, स्वचिंतन करेंगे, तो आपकी सदा उन्नति होती रहेगी। स्वदर्शन करेंगे, उल्टी चाबी परदर्शन, सीधी चाबी खुद को बदलना है, दूसरे को नहीं, बदला नहीं लेना है, खुद को बदल के दिखाना है सीधी चाबी। और हम सोचते हैं ये बदल जाएगा तो मैं बदल जाऊंगा, उल्टी चाबी। हम सब कार्य कर रहे हैं, बाबा की सेवाएं कर रहे हैं, और हम सबकी सेवा का एक ही उद्देश्य है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें बाबा का नाम बाला हो, बाबा की प्रत्यक्षता हो, बाबा की सेवाएं हो। काम मैं कर रहा हूं लेकिन नाम बाबा का हो, लेकिन हम उल्टी चाबी लगा रहे हैं, नाम मेरा हो जाए काम बाबा करा ले। विचार करके देखना चाबी कैसी है। और चाबी भी कहते हैं, जब बैंक में कोई लॉकर के अंदर कोई चीज रखी जाती है तो दो के हाथ में चाबी होती है, जिसने पैसा जमा किया, जिसने लॉकर रखा है, उसके हाथ में भी चाबी होगी और साथ साथ बैंक के मैनेजर के पास भी चाबी होगी। और जब उसमें से कुछ निकालना है तो दोनों की चाबी जब लगेगी तभी वो लॉकर खुलेगा, यही है ना सिद्धांत। तो बाबा भी कहता है कि अच्छा ठीक है बच्चे, आपको मैंने सब खजाने दिए हैं, लेकिन क्या ये एक के हाथ से चाबी से ताला खुल जाएगा? बाबा को साथ रखो, मैनेजर तो वही है, दाता वही है। ये नहीं कहो मेरे पास है, मेरा चिंतन है, मेरा ज्ञान है, मेरी अच्छी बुद्धि है, मैं प्लानिंग करता हूं। ये जो मैं है ना, ये सिंगल चाबी लगा देते हैं। बाबा की चाबी सदा साथ रहे कि बाबा की चाबी अगर लगेगी, बाबा साथ होगा हर पल, बाबा बाबा कराने वाला करा रहा है। हम सबको बाबा ने खिलौना बनाया है। कभी कभी लगता है सचमुच कोई मेरी कोई महिमा करता, हम कहते हो क्या महिमा कर रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, कराने वाला बाबा करा रहा है हम लोगों को, तो उसने ऐसा खिलौना बनाया है। हम कहते हैं सिर्फ बाबा तुम बुद्धि को स्वच्छ रखना, निर्मल रखना। और मैं इस पर ही ध्यान देता हूं, शायद आपको मालूम होगा जब बाबा ने मुझे ये वरदान दिया था, मैंने सुनाया है, तो बाबा ने एक शब्द में कहा था, बच्चे तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला, ये बुद्धि जो चाहे वो कर लेगी, लेकिन तुमने सदा स्वचिंतन किया है, शुभ चिंतन किया है, इसलिए वरदान मिला। अगर हम अपनी बुद्धि को बड़ा दिव्य और विशाल बनाना चाहते हैं, यथार्थ रखना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी प्रकार का व्यर्थ का किचड़ा मिक्स न हो। बुद्धि बहुत विशाल है, हरेक की है। बाबा ने हरेक बच्चे को जन्मते ही दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र का वरदान दिया है। दिव्य दृष्टि तो कोई कोई को मिली, लेकिन दिव्य नेत्र अनुभव का नेत्र है, बुद्धि का नेत्र है, और वो वरदान हम सब बच्चों को प्राप्त है। लेकिन इस वरदान को अगर यथार्थ रीति से हम अपने साथ रखना चाहते हैं, तो बाबा कहता है बच्चे इस बुद्धि को बड़ा स्वच्छ रखो, साफ रखो। कोई कुछ भी कर रहा है, आप इस बुद्धि में कोई व्यर्थ बातों को नोट नहीं करो, इसके अंदर कोई भी व्यर्थ किचड़ा नहीं रखो, क्योंकि बाबा हरेक की कर्म कहानी को जानता है, और समय और ड्रामा उसको उसकी सजा अपने आप देगा। आप निश्चिंत स्थिति में रहो, आप अपनी स्थिति को डगमग नहीं करने दो। अगर अचल अडोल एक रस स्थिति किसी को बनानी है तो उसकी विधि क्या है? बिना विधि के स्थिति एक रस नहीं बनेगी, और उसकी विधि है फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। ड्रामा कल्याणकारी है, मुझे अपनी स्थिति को डगमग नहीं करना, क्यों हो रहा, कैसे कर रहा, ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा है। बाबा कहता बच्चे फुल स्टॉप, तुम सोचो नहीं, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ने का बोझ चढ़ जाएगा। हम सब बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे अपने भाग्य को बनाने के लिए बाबा के घर में आए हैं, और भाग्य विधाता हम सब के भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बनाना चाहता है, लेकिन विधि और विधान के सम्मान को देते हुए, उसको उल्लंघन करके नहीं, इस मर्यादा को तोड़ करके किसी का भाग्य नहीं बनाता। हम सभी भी बाबा के विधि और विधान को समझ करके, हर बात में क्या विधि है, क्या विधान है, क्या कायदे कानून है, हम सब अंडरलाइन करें। और मैं समझता हूं इसको नोट करने के लिए आप 365 दिन के 365 विधि और विधान नोट कर सकते हैं, मुरली से ही। वरदान में जो भी भाव के शब्द आए हैं उसके पीछे विधि और विधान है। तो हम सभी बाबा के बच्चों को सम्मान मिल रहा है, सम्मान दाता दे रहा है, लेकिन कहता है मांगना नहीं, मैं मांगने से कुछ नहीं देता हूं, मांगने से मरना भला। तुम दाता बन करके दूसरों को देते चलो, नियम और मर्यादाओं पर चलते चलो, तो तुमको स्वतः सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान देवा बाबा है, आप उसके बच्चे हैं, सबको सम्मान दो, भरपूर करो। तो जो कुछ बाबा ने दिया है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, मनसा वाचा कर्मणा, जो शक्तियां हैं बाबा की सेवा में लगा दें और यथार्थ विधि पूर्वक लगा दें, तो हमारा भाग्य ऊंचे से ऊंचा स्वतः बन जाएगा। ओम शांति।
तेरी राह।